नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बसेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।